आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि किसी भी आलमी रहनुमा ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। लोकसभा से खिताब में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हथियारों ने फौजी कार्रवाई में फैसलाकुन रोल अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरजोर अंदाज में कहा कि भारत ने महज 22 मिनट में जवाबी कार्रवाई करके पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लोकसभा में वजीर दाखिला अमित शाह ने मुत्तला किया कि सिक्योरिटी दस्तों ने पहलगाम हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर खसूसी बहस हो रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह बात दोहराई कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर हिमाकत करता है तो भारत ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू करने से नहीं हिचकिचाएगा। यूक्रेन की एक जेल पर रूस के फजाई हमले में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए और कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जमीन के मुशाहदे से मुतालिक सैयारचे निसार मिशन को रवाना किए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो भारत अमरीका का पहला मुश्तरका मिशन है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा है कि किसी आलमी रहनुमा ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। वजीर आजम ने यह बात लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खसूसी बहस का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह पहलगाम में किए गए दहशतगर्दाना हमले का भारत की तरफ से एक मजबूत, कामयाब और फैसलाकुन जवाब था। जना मोदी ने यह रायजनी अमरीका के जेर असर पाकिस्तान के साथ जंगबंदी से इत्तेफाक करने के अपोजिशन के इल्जाम के दौरान की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत को ऑपरेशन सिंदूर ये दलील देते हुए रोकने को कहा कि वो इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे।
वजीर आजम ने कहा कि यह ऑपरेशन 7 मई को किया गया था और भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें भारत की मुसल्लह अफवाज ने महज 22 मिनट में इसका बदला ले लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियाई ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा।
22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दूसरा पक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई की तो कई बात नहीं, लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया।
जनाब मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये वाजे कर दिया गया है कि अगर भारत पर कोई दहशतगर्दाना हमला किया गया तो वो इसका जवाब अपने तरीके से देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत दहशतगर्दी की हिमायत करने वाली हुकूमतों और दहशतगर्दों के सरगुनाओं को अलग अलग नहीं समझता।
आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
वजीर आजम मोदी ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुदकफील भारत की ताकत देख ली, जिसमें भारत ने तैयार किए गए हथियारों ने फैसलाकुन रोल अदा किया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के फजाई ठिकानों और असासों को इस कार्रवाई के दौरान जबरदस्त नुकसान पहुंचा है।
ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। मेड इन इंडिया ड्रोन, मेड इन इंडिया मिसाइल ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल करके रख दी।
وزیر اعظم نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا ملک کی قومی سلامتی کے تئیں کوئی واضح نظریہ کبھی نہیں رہا اور کانگریس کی قیادت والی حکومتوں کے تحت کمزور حکمرانی کی وجہ سے دہشت گردانہ حملوں میں بہت سے شہریوں کی جانیں گئیں۔
2004 سے 2014 کے بیچ جو آتنکی گھٹنائیں ہوتی تھی ان گھٹناؤں میں بہت بڑی کمی آئی ہے۔ اس لیے دیش بھی جاننا چاہتا ہے اگر ہماری سرکار آتنکواد پر نکیل کس سکتی ہے تو کانگریس سرکاروں کی ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آتنکواد کو پھلنے پھولنے دیا۔
اس سے پہلے دن میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ حفاظتی دستوں نے پہلگام حملے میں ملوث 3 دہشت گردوں کو فوج، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی میں کل آپریشن مہادیو کے تحت ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دہشت گردوں کے پاس سے 3 رائفلز ملی جنہیں پہلگام حملے میں استعمال کیا گیا تھا۔
کل آپریشن مہادیو میں سلیمان عرف فیضل جٹ افغان اور جبران 3 آتنکوادی سینا، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس کے سنیوکت ابھیان میں آپریشن مہادیو میں مارے گئے۔ سلیمان اے شرینی کا لشکر طیبہ کا کمانڈر تھا پہلگام حملے میں اور گگن گیر آتنکی حملے میں وہ لپت تھا، اس کے ڈھیر سارے ثبوت ہماری ایجنسیوں کے پاس۔
دوسری طرف بحث میں حصہ لیتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے پاکستان پر یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ پاکستان نے ایک بے رحمانہ حملہ کیا اور اس کی سازش تیار کی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران اپوزیشن حکومت کے ساتھ ایک چٹان کی طرح کھڑی رہی۔
The moment Operation Sindoor began, in fact even before it began, the opposition committed itself, all the parties, that we will stand like a rock with the forces and with the government of India. We heard the odd jibe, the sarcastic remarks from some of their leaders, but we said absolutely nothing. And this was something that was agreed among all the senior leadership of the India Alliance. And we are very proud that as an opposition, we stood united as we should have.
کانگریس رہنما پرینکا گاندھی، سماجوادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو، ڈی ایم کے سے وابستہ کنیموئی، شیو سینا کے شری کانت شندے اور بی جے پی کے رشی کانت دوبے سمیت بہت سے دیگر ارکان نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم کے جواب کے بعد لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ راجیہ سبھا میں بھی آپریشن سندور پر خصوصی بحث ہو رہی ہے۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک کے مستقبل کو سمت عطا کرنے میں آپریشن سندور کا رول انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر دفاع نے یہ بات دہرائی کہ اگر پاکستان مستقبل میں کوئی حماقت کرتا ہے تو بھارت آپریشن سندور پھر سے شروع کرنے میں نہیں ہچکچائے گا۔
ہم نے یہ سنشچت کیا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اس پیج آف کیلکولس کو چینج کریں گے اور ہم آتنکواد کو ان کے لیے ایک کاس مس ایڈونچر بنا کر ہی رہیں گے تاکہ آتنکوادیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یعنی ہمارے ایک بھی بھارتی ناگرک کو کچھ ہوا تو ان کے پورے آتنک ٹھکانوں کو ہم جڑ سے نفت نام کریں۔ اس لیے سبھاپتی مہودے، میں مانتا ہوں کہ پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں کیا گیا آپریشن سندور ایک گیم چینجر ثابت ہوا ہے۔
دوسری جانب بحث میں حصہ لیتے ہوئے راجیہ سبھا میں اپوزیشن رہنما ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ اڑی، پلوامہ اور اب پہلگام حملہ انٹیلیجنس کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے دوران دہشت گردوں کو گرفتار کرنے میں حکومت کی ناکامی پر بھی سوال کیا۔
2016 میں اڑی اور پٹھانکوٹ آتنکی حملہ، 2019 میں پلوامہ اور اب 2025 میں پہلگام آتنکی حملہ ہوا۔ ان سبھی گھٹناؤں سے صاف ہے کہ بار بار دیش کی سرکشا اور انٹیلیجنس میں چوک ہو رہی ہے، فیلیور ہے۔
جناب کھڑگے کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع نے زور دے کر کہا کہ جنگ بندی کا اعلان کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا گیا تھا اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ، بی جے ڈی کے سبھاسیس کھنٹیا، اے آئی اے ڈی ایم کے ڈاکٹر ایم تھمبی دورئی، ٹی ایم سی کی ساگریکا گھوس، ڈی ایم کے تروچی سیوا، جے ڈی یو کے سنجے جھا اور ہرش وردھن نے بحث میں حصہ لیا۔ بحث ابھی جاری ہے۔ آج پیٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ بھارت میں خاص طور سے ساحل کے نزدیک علاقوں میں تیل اور گیس کے امکانات کی تلاش میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے، جس سے ملک کی ہائیڈرو کاربن صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے۔ राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में जना पुरी ने कहा कि 2022 में तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर के जिस साहिल के नजदीक इलाके में जाना मुमकिन नहीं था उसे खोला जाना एक तारीखी कदम है। उन्होंने कहा कि इस कदम से अंडमान और निकोबार के साहिल के नजदीक खित्ते समेत गहरे पानी और उन अगले इलाकों तक रसाई मुमकिन हो पाई है जहां अब तक इम्कान तलाश नहीं किए गए थे। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी एक फलसफियाना खाके के तौर पर काम कर रही है जिसका मकसद सभी को आलमी मयार की तालीम फराहम करना है। वो आज नई दिल्ली में 2025 के अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब प्रधान ने कहा कि 2020 की तालीमी पॉलिसी 2047 के विकसित भारत के नस्बुल ऐन के हुसूल के लिए एक नहायत अहम रास्ता बन गई है। वजीर तालीम ने कहा कि ये पॉलिसी भारत के तालीमी निजाम में दूरदराज तब्दीलियां ला रही है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने 28 और 29 जुलाई को प्रलय मिसाइल के दो लगातार कामयाब तजुर्बात किए। ये तजुर्बात ओडिशा के साहिल से कुछ दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से किए गए। इन तजुर्बात के तहत ये मिसाइल अपनी तयशुदा ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दूरी तक अपने मुकर्रा सही निशाने पर पहुंचे। प्रलय मिसाइल DRDO ने मुल्क ही में तैयार किया है जिसे बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचने के लिए जदीद तरीन निजाम से लैस किया गया है। इस मिसाइल में मुख्तलिफ निशानों पर कई तरह के हथियार ले जाने की सलाहियत है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इन कामयाब तजुर्बात पर DRDO मुसल्लह फौज और दिफाई सनत को मुबारकबाद दी है। जुनूब मशरकी यूक्रेन में एक सरहदी खित्ते में कायम एक जेल पर रूस के मुबैना हवाई हमले में 16 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेन के अफसरान के मुताबिक ज़ापोरिज़्या में रात भर किए गए इन हमलों में आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में यह इलाका 4 मशरकी खित्तों में से एक है जिस पर रूस ने 2022 से अपना दावा किया हुआ है। इस दौरान जनूबी रूस में यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में रोस्तोव खित्ते में एक शख्स हलाक हो गया। थाईलैंड और कंबोडिया के फौजी कमांडरों ने आज बातचीत की। इन जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों ने 5 दिन तक लड़ाई जारी रखने के बाद एक माहदे का ऐलान किया है जिसके बाद मुतनाज़ सरहद पर अमन का माहौल वापस आ गया है और बेघर अफराद भी अपनी जगहों पर वापस आना शुरू हो गए हैं। अमरीका और चीन के अफसरान ने आज स्टॉकहोम में दूसरे दिन बातचीत शुरू की जिसका मकसद दुनिया की इन दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान देरीना इकतसादी तनाज़ात को खत्म करना है। अमरीका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट और चीन के नायब वजीर आजम हेली फेंग बातचीत में शिरकत कर रहे हैं। दोनों वफूद के दरमियान कल रोजिनबाद में 5 घंटे से ज्यादा मीटिंग जारी रही जो वस्ती स्टॉकहोम में स्वीडन के वजीर आजम का दफ्तर है। पहले दिन की बातचीत के बाद किसी भी मुल्क ने कोई बयान नहीं दिया है। नासा और इसरो के सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार को खला में भेजने के लिए 27 घंटे 30 मिनट की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई है। कल खला में भेजे जाने वाले इस मसनूई सैयारचे के लिए आज भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:10 पर उल्टी गिनती शुरू की गई। निसार भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो और अमरीकी खलाई एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स और खलाई इंतजामिया नासा का पहला मुश्तरक सैयारचा मिशन है। जमीन के मुशाहदे के इस मुश्तरक मिशन का मकसद जमीन और बर्फ पर होने वाली तब्दीलियों नीज कुदरती आफात का पता लगाना और आबो हवा के मुतालियात नीज कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के लिए अहम आदादोशुमार फराहम करना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज खवातीन के फिडे शतरंज आलमी कप 2025 जीतने पर दिव्या देशमुख की तारीफ की गई। राज्यसभा में नायब चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि दिव्या देशमुख ने इस टूर्नामेंट को जीतकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी कम उम्र में जबरदस्त हुनर का मुजाहरा किया और उनका सफर नौजवान नस्ल के लिए एक जज्बे का वसीला है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि किसी भी आलमी रहनुमा ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। लोकसभा से खिताब में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हथियारों ने फौजी कार्रवाई में फैसलाकुन रोल अदा किया। वजीर आजम ने पुरजोर अंदाज में कहा कि भारत ने महज 22 मिनट में जवाबी कार्रवाई करके पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लोकसभा में वजीर दाखला अमित शाह ने मुतला किया कि सिक्योरिटी दस्तों ने पहलगाम हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर खसूसी बहस हो रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह बात दोहराई है कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर हिमाकत करता है तो भारत ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू करने से नहीं हिचकिचाएगा। यूक्रेन की एक जेल पर रूस के फजाई हमले में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए। और कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जमीन के मुशाहदे से मुतालिक सैयारचे निसार मिशन को रवाना किए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।